स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के हम सभी लोग पिछले कई दिनों से भक्ति के द्वारा अपने जीवन को परिमार्जित करने और अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भक्ति हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। अगर भक्ति का सच्चा स्वरूप और भक्ति की महिमा हमारे भीतर स्पष्ट हो तो एकमात्र भगवान की जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे जीवन को ठीक जिनेंद्र भगवान जैसा ही अपने आत्मस्वरूप में जो लीन है हमें भी वैसा ही बनने में मदद कर सकती है। भक्ति करके हमारा चित्त निर्मल होता है और चित्त की निर्मलता में ही धर्म है। इसलिए अगर हम ये कहें कि भक्ति हमें वास्तव में धर्मात्मा बनाती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धर्म की क्रियाएं दोहरा लेना, धर्म के वचन वाणी से कह लेना बहुत आसान है, लेकिन धर्म को मन में धारण करना और मन में धर्म के धारण होते ही मन का निर्मल हो जाना ये तो अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति यह काम बहुत आसानी से करती है। एक बार स्वाध्याय करने वाला स्वाध्याय करते करते थक जाएगा, जाप देने वाला दो चार दस पच्चीस जाप देकर के थक जाएगा, लेकिन भगवान की पूजा में कोई लीन हो जाए तो घंटों व्यतीत हो जाए तब भी नहीं मालूम पड़ेगा कि कितनी देर हो गई। ऐसी आसान सी भक्ति हमारे अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है। मन शांत भयो ऐसा कहते हैं, मेरा मन आपके चरणों में आकर के शांत हो गया, मैं खुशहाल हो गया, पावन भई पर्याय मेरी, मैं भयो पूर्ण धनी, ऐसा ऐसा लिखा, अकेले भक्ति से ये सब मिल गया। और भक्ति करते समय कह रहे हैं कि प्रिय वचन की हो टेव, गुणगन गान में ही चित पगा। अब जैसे जैसे मैं भक्ति में डूबता जाता हूं मेरी वाणी से प्रिय वचन ही निकलते हैं और मेरे हृदय में अब दूसरों के गुण ही दिखाई पड़ते हैं। पहले तो मेरी वाणी में दूसरे के बिगाड़ करने वाले अप्रिय वचन निकला करते थे और मेरे मन में भी दूसरे के दोषों को देखने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती थी। जब से मैंने भक्ति शुरू की है अब तो मेरे मन में दूसरे के गुण देखने की, उन गुणों की प्रशंसा करने का भाव होता है। और इतना ही नहीं, मेरे वचन भी अब अप्रिय न होकर प्रिय हो गए हैं। क्या इस तरह हम भक्ति कर सकते हैं? जिन वचनों से मैंने भगवान का गुणगान किया है, अब उस टंग को, उस जिह्वा को जिससे मैंने भगवान के गुणगान किए हैं, मैं मलिन नहीं होने दूंगा। जिस मन में मैंने भगवान की भक्ति से भगवान को विराजमान किया है, उस मन में अब मैं पापों के लिए जगह नहीं दे पाऊंगा, अब मैं दोषों के लिए जगह नहीं दे पाऊंगा। क्या ऐसा भक्ति करते समय कोई बहुत कठिन काम नहीं है? बस थोड़ा सा मन को साधने की बात है। जैसे ही वाणी से कटुता आने लगे, हम चुप रह जाएं कि अभी सुबह ही तो भगवान की भक्ति करके इसी वाणी से आया हूं। जैसे ही मन में कलुषता आने लगे, हम सावधान हो जाएं कि अभी तो मैंने भगवान को अपने मन में विराजमान किया था और अब मेरे मन में कलुषता कैसे आ गई। ऐसा यदि हमारे मन में भगवान की भक्ति के दौरान विचार आता है तो मन वाणी अपने आप निर्मल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा हमने पिछले दिनों भी कई बार अलग अलग ढंग से भक्ति के बारे में समझा। वादिराज महाराज जिस तरह भक्ति करते हैं उससे भी हम निरंतर प्रेरणा ले रहे हैं कि हमारा चित्त कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा हो जाना चाहिए। कोपावेशो नतब नतब क्वापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तभी परमोपेक्षैवानपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी क्वैवं भूतम भुवन तिलक प्राभवम यत् त्वत्परेषु। आपके जैसा प्रभाव, आपके जैसी महिमा हमने कहीं नहीं देखी किसी के अंदर। भगवान कोपावेशो नतब नतब क्वापि देव प्रसादो, कोई आपके दर्शन करने नहीं आया है तो आप उससे नाराज होकर के उससे अभिशाप नहीं देते? कोई आपके चरणों में लोटपोट हो रहा है, आपकी भक्ति में तल्लीन हो रहा है तो आप उससे प्रसन्न होकर के उसको कोई वरदान नहीं देते? परम उपेक्षा, आप सबके प्रति उपेक्षा अर्थात अवॉइड करना नहीं लेना, उपेक्षा का अर्थ, ये जैन धर्म का टेक्निकल वर्ड है उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स इक्विलिब्रियम, हाँ, उपेक्षा मीन्स इक्विनिमिटी, साम भाव, न राग है न द्वेष है। ऐसे आप परम उपेक्षा को प्राप्त हो गए हैं, भगवान मैं आपके चरणों में आकर के बैठा हूं, क्या शिक्षा लेऊं मैं आपसे? मैं तो कदम कदम पर किसी से प्रसन्न होकर के और उसका काम बना देता हूं, किसी से अप्रसन्न होकर के उसका काम बिगाड़ने लगता हूं। मैं अभी आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाता, ऐसा आना चाहिए मन में भाव भक्ति करते समय। नहीं, भक्ति तो मैं बहुत गावा जाके कर लेता हूं, बहुत बढ़िया कर लेता हूं, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि भक्ति ठीक से नहीं करता हूं? बढ़िया करता हूं भक्ति, जैसी विधि लिखी वैसी करता हूं। पंडित जी हमको जैसा जैसा पूजा करना बता गए थे, भक्ति स्तुति पढ़ना, हम वैसा वैसा करते हैं। बड़ी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है हमारी तो भक्ति करने की। अच्छा, लेकिन अगर मैं भक्ति की प्रक्रिया तो बहुत अच्छे से करता हूं पर भगवान जैसे हैं उनसे मैं अपने जीवन को बदलने की कोई प्रेरणा नहीं लेता हूं, तो वो मेरी भक्ति मेरे लिए कोई लाभकारी नहीं होगी। भक्ति तो जैसा भगवान का स्वरूप है उसकी की जा रही है भक्ति, और वैसा ही स्वरूप मेरे भीतर रोज रोज मैं प्रकट होते देखूं, मैं तो क्षण भर में किसी से असंतुष्ट हो जाता हूं, मैं क्षण भर में किसी से संतुष्ट हो जाता हूं और हर्ष और विषाद, राग और द्वेष, अपने और पराये के इस खेल में खुद ही उलझता रहता हूं। भगवान आप इस खेल से बाहर हो गए। कल तक जिसे अपना कहते हैं, हो सकता है परसों उसे पराया मानना पड़े, और जिंदगी भर जिसके पराया मानते रहे, हो सकता है उसे ही अपना कहना पड़े। ये खेल ही तो है। इस अपने पराये के राग द्वेष के हर्ष विषाद के खेल से भगवान बाहर हो गए हैं। परम उपेक्षा संयम को जिन्होंने धारण कर लिया है, सबके प्रति साम भाव है, निंदक के प्रति भी और वंदक के प्रति भी। यशोधर मुनि महाराज के गले में क्षणिक ने अत्यंत आवेश में आकर के सर्प डाल दिया था और अपनी महारानी से जाकर कहा था कि आपके महाराज मिल गए थे निर्वस्त्र, शर्म भी नहीं आती उनको, कपड़े भी नहीं पहने थे, मैं तो उनके गले में मरा हुआ सांप डाल के आ गया। चेला अत्यंत विहल हो उठी थी, क्या किया आपने, उनका कुछ नहीं होगा, आपने अपना बिगाड़ कर लिया। अरे वो तो कब के निकाल निकूल करके भाग गए होंगे, अब तक रुकने वाले हैं क्या? नहीं, अगर वो मेरे महाराज हैं तो निकाल के नहीं भागे होंगे, वहीं बैठे होंगे। चलो इसी समय चलो। तीसरे दिन पहुंचे थे महाराज के चरणों में और सांप ज्यों का त्यों गले में मरा हुआ पड़ा है, जिसमें लाखों चीटियां लग गई हैं और वो महाराज के शरीर को भी खा रही हैं। फिर भी भगवान महाराज अपने साम भाव में लीन हैं और सैनिक और चेला ने मिलकर के जब सर्प को अलग करके उपसर्ग दूर किया और प्रणाम किया तो धर्म वृद्धि अस्तु, समान भावेन धर्म वृद्धि अस्तु, द्वयो अपि, दोनों के लिए समान भाव से मेरी धर्म वृद्धि, ऐसा महाराज के मुख से निकला। तब सैनिक चकित हो गए, मुझे तो डांटना चाहिए था, इनको अच्छा कहना चाहिए था, लेकिन दोनों को कह रहे हैं कि धर्म वृत्ति समान रूप से। बस उतनी सी बात सैनिक का भी कल्याण करने में कारण बन गई, हमारा कल्याण करने में ये बात कारण क्यों नहीं बन पाती? हम तो रोज देखते हैं भगवान के उस स्वरूप को और उनसे हम कोई प्रेरणा नहीं ले पाते। अकेले आशीर्वाद देते समय की स्थिति देख करके सैनिक ने उसी क्षण सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और अपने 33 सागर की आयु को घटा करके मात्र 84,000 वर्ष शेष रहे और आगामी तीर्थंकर बनने की हैसियत अपने भीतर योग्यता हासिल कर ली। उतनी सी बात से कि इतनी समानता, यही बादीराज महाराज कहना चाह रहे हैं कि भगवान मैं जब आपकी भक्ति कर रहा हूं तो आपका ये स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है, अद्भुत है आपका स्वरूप। मैं तो क्षण भर में संतुष्ट और असंतुष्ट होकर के अपना संसार बढ़ाता हूं, आप तो किसी से ना असंतुष्ट हैं ना किसी से संतुष्ट हैं, सबके प्रति आपके मन में साम्य भाव है। लेकिन मजा ये है आपके साथ, मजा ये है, कोई अगर किसी का उपद्रव करे तो लोग उससे डर करके उसकी आज्ञा मानते हैं, और कोई किसी को बहुत प्यार करे तो प्यार से लोग आज्ञा मानते हैं। ना आप किसी को अतिरिक्त प्यार करते ना किसी से घृणा करते, फिर भी सारी दुनिया आपकी आज्ञा मानती, बड़ा आश्चर्य। आज्ञा वश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी, और ये इससे मालूम पड़ता है कि आपके चरणों में जो आकर के बैठ जाता वो अपना बैर भाव तक भूल जाता है। आपकी वितरागता देखने लायक, आपकी वितरागता अत्यंत प्रेरणा देने वाली है। ऐसा हमें भक्ति करते समय भाव आना चाहिए, भगवान की वितरागता हमें इस तरह दिखाई पड़नी चाहिए कि भगवान ने तो बिल्कुल कोई इनविटेशन कार्ड भी नहीं बांटा कि हमारे पास आकर के बैठो, हमारी पूजा करो और हम खुश होकर के तुम्हारा काम बना देंगे, कब भी नहीं कहा। और मिस्टर तुम नहीं आए अगर तो फिर मैं देख लूंगा, ऐसा भी नहीं हुआ कभी भी, तो नहीं तो फिर आना पड़ता, अगर ऐसा कहते तो आना पड़ता और अगर कुछ काम बनता तो आना पड़ता। लेकिन अपन तो इसके बावजूद भी आ रहे हैं, रोज रोज आ रहे हैं, वो कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं छीनते, फिर भी यही उनकी अपनी वितरागता है और यही उनकी अपनी क्वालिटी है। इसीलिए वे भगवान हैं। कैवम भूतम भुवन तिलक प्राभवम तत्परेशु, तीनों लोकों में मैं खोज खोज कर थक गया, ऐसा प्रभाव, ऐसी प्रभुता, ऐसी भगवत्ता हमने कहीं और नहीं देखी। भगवान भक्ति की ऐसी महिमा हमारे अंदर, भगवान की महिमा अगर ऐसी आ जावे तो भक्ति भी महिमा मंडित हो सकती है, ऐसा हमें अपने मन में विचार करके और भक्ति करनी चाहिए। हम लोग असंतुष्ट क्यों होते हैं? दूसरे के दोष देखते हैं और दूसरे के दोष देखने में हम अपने आप को ऊंचा मान बैठते हैं। अपने अवगुणों को फिर देखने का हमारे पास कोई उपाय नहीं रह जाता। जिसकी दृष्टि दूसरे के दोष देखने में लगी है वो कभी अपनी गुणवत्ता को भी प्राप्त नहीं कर सकता। और एकमात्र भगवान है जिनके चरणों में कोई पापी भी आ जाता है, उनकी निंदा करने वाला भी आ जाता, तब भी उसके दोष नहीं देखते हैं, उसके भीतर छिपी हुई अनंत आत्म शक्ति कोई देखते हैं। क्या ऐसी दृष्टि अपन को मिल सकती है? भगवान की भक्ति करते करते ऐसी दृष्टि अपन की भी आ सकती है। एक पंडित जी हुए कटनी में, कटनी वाले पंडित जी कहलाते थे, बड़े पंडित जी। अभी इन दिनों आचार्य श्री कटनी में ही विराजे हुए हैं और कितने साल के बाद पहुंचे हैं आचार्य महाराज। 1982 में वहीं से यात्रा शुरू हुई थी शिखर जी की, 2 दिसंबर को कटनी से। उसके बाद अब इतने वर्षों के बाद, 21 वर्ष के बाद, और आचार्य श्री कटनी विराजे हैं। और वो उदाहरण आपको सुनाऊं, कटनी वाले पंडित जी के एक के बाद 2 उदाहरण याद आ गए, बताइए अब क्या करें? 2 ही सुना दूंगा। उनके जीवन का एक उदाहरण वो खुद सुनाते थे पंडित जी, कि क्या हुआ, वो सामायिक करने बैठे। अब सामायिक करने बैठे तो उनके जो बच्चों के बच्चे थे, क्योंकि इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आप लोग अलग कहते हैं, हम लोग उधर अलग कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में कहते हैं लोग, कोई दोहिता बोलता, क्या बोलता पता नहीं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो हमने कह दिया उनके बच्चों के बच्चे, है ना, उनके बिटिया का बेटा या कि उनके बेटे का बेटा, जैसा आपको जो कहना हो वैसा कह दो सीधा। तो वो सब थे, उन दिनों छुट्टी चल रही थी उनकी, तो सब नाना जी के यहाँ भी आए थे और वहां के उनके दादाजी हैं तो वो तो हैं ही सब। अब खेल कूद चल रहा है, दादाजी या नाना जी सामायिक कर रहे हैं, करने दो, अपन को क्या करना, अपने के खेल में क्या बाधा आने वाली। सामायिक करने से खेल में कोई बाधा नहीं आती, लेकिन खेल से सामायिक में बाधा आ जाए तो सामायिक काय की, ये कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, और वो सामायिक कर रहे हैं। दृष्टि अगर हमारी गुणों के प्रति हो तो बाहर का जगत कितना भी दोष युक्त हो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यदि हमारी दृष्टि बाहर दोषों पर है तो फिर हमें क्या दिखाई पड़ेगा, अपनी गुणवत्ता से भी हम विचलित हो जाएंगे। और वही हुआ, वे सामायिक में बैठे बैठे सामायिक तो कर ली, उसके बाद सामायिक पूरी हुई तो सब बच्चों को बुलाया, क्यों रे हम सामायिक कर रहे थे और तुम इतना उद्यम कर रहे थे क्यों? अब बस उसमें से एक जरा होशियार था बच्चा, वो तो ताली बजा बजा करके और उछल कूद करने लगा। दादाजी को, दादाजी भगवान बन ही नहीं सकते, दादाजी भगवान बन ही नहीं सकते। अरे क्या हुआ भाई, बोले दादाजी भगवान बनने की तो कोशिश कर रहे थे अगर, तो उनको हम ऊधम करते कैसे दिख गए, वो तो भगवान जैसे बैठे हुए थे, तो दादाजी भगवान नहीं बन सकते। ये छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात समझा दी कि जिन क्षणों में हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त कर रहे हैं, वे क्षण ही नहीं जब हम श्रद्धा भक्ति करके वापिस लौटे, तब भी हमारे मन में दूसरे के दोष देखने की दोषवादे च मौनम सदवृत्यानाम गुणगण कथा। जहां जहां, क्योंकि मैंने तो भगवान के गुण देखने की प्रवृत्ति अपने भीतर जागृत कर ली है, इसलिए अब हर जगह मुझे गुण ही दिखाई देना चाहिए, और दोष दिखाई पड़ जाए तो दोष बाजे तो मौन मौनम, मैं चुप रहूंगा, दोषों को कहूंगा नहीं। ये हमारे जीवन में ऐसी चीज प्राप्त हो सकती है। वो दूसरा वाला उदाहरण सेव करके रख लिया मैंने, बाद में सुना, क्योंकि अभी अपना वो रिलेटेड नहीं बैठेगा इससे। वो उदाहरण वो आचार्य श्री के साथ की कोई घटना है, उसको मैं बाद में सुना। हम इस तरह भक्ति से एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज और होता क्या है, भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे अंदर इतनी अधिक सामर्थ्य आ जाती है कि फिर विपत्ति पड़ने पर हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, और ना ही हमने अपने जीवन में जो धर्म धारण किया उससे विचलित हो पाते। ये दोनों चीजें भक्ति सिखाती, इसलिए जो भक्ति नहीं करता वो विचलित हो जाता बहुत जल्दी, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं है कहीं, उसने कहीं किसी को अपना सहारा बनाया ही नहीं, तो अकेला पड़ जाता है। जब हम किस भक्ति और श्रद्धा रखते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते, फिर हमारे विचलित होते समय भी हमें कोई सहारा संभालने वाला होता है। ये एक हमारे अंदर विश्वास बना रहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं भगवान की भक्ति करता हूं, भगवान मेरे साथ में है। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं बादीराज महाराज, कोपावेशो न तब न तब कापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तब ही परमोपेक्षैवान अपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनिर सन्निधिर वैरहारी क्वैवम भूतम भुवन तिलक प्रावहम तत्परेषु देवस्तोतुम तिदिव गणिका मंडली गीत कीर्ति तोतूर्ति त्वाम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनोया तस्य क्षेमम न पद मट्टो जातु जो ऊर्ति पंथा तत्पक ग्रंथ स्मरण विषय नैष मुमूर्ति मर्त्या। अपन अपनी भाषा में भक्ति कर सकते हैं, उनके लिए यही भाषा आसान थी, अपन को थोड़ी कठिन लग रही क्योंकि समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाह रहे थे। देवस्तोतुम त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्ति, हमने सुना है भगवान स्वर्ग लोक से आकर के समस्त देवी देवता आपकी स्तुति करते हैं, और स्तुति कैसी करते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, दोनों चीजें एक साथ होना बहुत बहुत कठिन है। प्रबुद्ध हो और शांत हो ये बहुत कठिन है, हां ज्ञानवान हो और शांत हो सरलचित हो अत्यंत दुर्लभ। अज्ञानी होगा भोला भाला रह सकता, इग्नोरेंस और इनोसेंट दोनों एक साथ हुआ जा सकता है, लेकिन नॉलेजेबल हो अगर और साथ में इनोसेंट भी हो बहुत कठिन है। और भगवान आपकी ये बात इंप्रेस करती है कि आप सब जानते हैं सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी बहुत इनोसेंट हैं, बहुत भोले भाले, बहुत वीतराग हैं, किसी के प्रति आपके मन में कोई राग द्वेष नहीं है। ये स्तुति स्वर्ग से आकर के देवी देवता भी करते हैं, और ऐसी ही अगर कोई आपकी स्तुति करे इसी तरह से कि आप सर्वज्ञ हैं और वीतराग हैं, इन दोनों चीजों की स्तुति करे तो क्या होगा, न जातु जो हूर्ति पंथा, तब फिर उसके मोक्ष मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। वो तत्व ग्रंथ स्मरण विषय नैष मोमूर्ति मर्त्या, और वो मनुष्य कभी भी अपने धर्म को विस्मृत नहीं कर सकता। विपत्ति आने पर दो ही चीजें संभव होती हैं, अपने सच्चे मार्ग से हम विचलित हो जाते हैं और अपने धर्म को भूल बैठते हैं। और अगर हम भगवान की भक्ति इस तरह से करते रहें, उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता को निरंतर हमारे ध्यान में बनी रहे, तो वो हमें अपने धर्म से विमुख नहीं होने देती और ना ही हमें सच्चाई के मार्ग से विमुख होने देती है। ये दोनों चीजें भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हम चाहें अगर तो एक छोटा सा उदाहरण अगर इसके लिए, मैं मुझे याद नहीं आ रहा था, एक बाबा जी थे, दोनों स्थितियों में कैसे हम विपत्ति आने पर भी, वादीराज महाराज तो सामने हैं अपने, वादीराज महाराज को तो कुष्ठ रोग हो गया है और वे एक ही भाव स्तोत्र कर रहे हैं, उनके कुष्ठ रोग हो जाने के बाद भी उनके मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं आई है और ना ही वो धर्म को भूले हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है इसके बाद भी वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो स्तुति ही उनके अपने जीवन को संभाले हुए है। और दूसरा उदाहरण आपको दूं, एक बाबा जी चले जा रहे हैं रास्ते से और पीछे से आकर के किसी ने उनके सिर पर लाठी मार दी। अब लाठी मार करके वो भागा लाठी छोड़ करके, तो बाबा जी उसको आवाज दे रहे हैं कि भैया ये लाठी क्यों छोड़ के चले गए, ये तो ले जाओ। वो बड़ी मुश्किल में कि ऐसा आदमी हमने देखा ही नहीं कि जिसको हमने लाठी मारी और वो हमको बुला करके ये कह रहा है कि लाठी क्यों यहां छोड़ के चले गए, अपनी लाठी ले जाओ। उसको तो ये कहना चाहिए था कि जरा रुको मैं देखूं तुम कौन हो। अपने साथ अगर ऐसी स्थिति बने तो अपन क्या करेंगे, बहुत मुश्किल में तो नहीं डाल रहा हूं मैं, अपन कुछ भी नहीं कर पाते ऐसा भक्ति भक्ति करके अपने जीवन में कभी ये छोटी छोटी चीजें आई कि नहीं। अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो छोड़ो, व्रत उपवास छोड़ो, अभी इतना मन में आया कि नहीं कि मेरे ऊपर कोई इस तरह विपत्ति आ जाएगी तब भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। वो बाबा जी अपनी साधुता नहीं छोड़ रहे हैं और निरंतर उसको बुला रहे हैं कि अपनी लाठी ले जाओ। वो भयभीत हो रहा है पर फिर भी वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे एक बात बताएं कि आप इतने शांत कैसे हैं, मैंने लाठी भी आपके सिर पर चोट करी फिर भी आप चुप हैं। तो मालूम वो क्या जवाब देते हैं कि अगर मैं किसी पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता और उसकी एक शाखा टूट करके मेरे ऊपर गिर जाती तब मैंने यही माना कि तुमने मुझे लाठी नहीं मारी, वो तो सिर्फ मैं बीच में आ गया इसलिए मेरे ऊपर वो लाठी पड़ गई है, मेरे किसी कर्म के उदय से पड़ गई है। एक साधुता ये है, ये साधुता ये सज्जनता भगवान हमें सिखा रहे हैं अपनी वितरागता से। और दूसरा उदाहरण इसके साथ साथ जो हमारे अपने जीवन में घटित होता है और फिर हम विचलित होते हैं कि भगवान ने हमारी मदद तो की नहीं। एक बाबा जी बैठे हैं नदी के किनारे, क्लियर हो जाएगा दोनों उदाहरण से कि कौन सा वाला चुनना है, चुनना क्या, एक तो चुन के ही रखा पहले से ही, दूसरे ही चुनना है और क्या, ये वाला जो सुना चुका वो चुनना है, दूसरा वाला तो पहले से चुना हुआ है। वो भी बाबा जी हैं, नदी किनारे बैठे हैं, तपस्या में लीन है। उतने में धोबी आता है और अपने कपड़े धो करके और वहीं डाल देता है, बाबा जी से कहता है कि देखे रहना कोई गाय वगैरह आकर के गंदे ना कर दे। लेकिन गाय तो आएगी पानी पीने, आई गाय पानी पीने और उसी कपड़े के ऊपर से चली, कपड़े सब गंदे हो गए, धोबी लौटे वापस। अब लगे बाबा जी को कुछ भी अनाप शनाप कहने, बाबा जी ने थोड़ी देर तो सहन किया, उसके बाद बाबा जी को भी गुस्सा आ गई और वे भी खड़े हो गए कि क्या कहता है तू। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे से जूझेंगे आप, जूझ गए दोनों जन। अब दोनों जन जूझ गए तो बाबा जी की कितनी ताकत, बाबा जी को पटक दिया उसने और दबा दिया। अब जैसे ही बाबा जी को दबाया तो बाबा जी को फिर याद आए भगवान, और बाबा जी को भगवान ऐसे याद नहीं आए, उल्हाना देने के लिए याद आए, जैसे अपन को याद आ जाते विपत्ति में कि इतनी जिंदगी पूजा करी और का भाव, ऐसा उल्हाना आ जाता भक्ति पूजा करने वाले के मन में भी, तो उनके मन में आ गया। जैसे उनके मन में आया कि इतनी मैंने साधना करी इतनी तपस्या करी, इतनी पूजा भक्ति करी, भगवान आपकी आराधना करी और ऐसे मौके पर भी आप बचाने नहीं आए, तो फौरन फौरन आवाज आई कि हम तो तैयारी खड़े हैं बचाने के लिए, लेकिन ये तो समझ में आए कि बाबा जी कौन है और धोबी जी कौन है, दोनों एक जैसे मालूम पड़ रहे हैं। बाबा जी रहते अगर तो हम मदद कर सकते थे, बाबा जी धोबी जी हो गए। उलझ आया समझ में कि नहीं? हमारे साथ भी ये स्थिति है कि हम भक्ति के समय तो इतने बढ़िया रहते हैं, लेकिन फिर भक्ति करके बाहर निकलते हैं तो बाहर के जीवन में आने वाली विपत्तियों के समय भी वैसी जैसी भगवान की वीतरागता है वैसा साम्य भाव और समता भाव नहीं रख पाते हैं। इसीलिए तो विपत्ति हमारे ऊपर अपना प्रभाव बहुत अधिक दिखा करके चली जाती है, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर हम शिक्षा लेना चाहें तो भक्ति से ये दो तीन शिक्षाएं बहुत आसानी से ले सकते हैं। वाणी हमारी पवित्र हो जाए, मन हमारा पवित्र हो जाए तो भक्ति सार्थक है। और दूसरी चीज कि हमारे मन में अब गुणों के प्रति अनुराग जाग जाए, दोषों से हम विमुख हो जाएं, दोषों से हम बचने लगें। अगर ऐसी चीज हमारे मन में आ जावे तो हमारी भक्ति सार्थक होगी। इसी भावना के साथ कि हम सब भक्ति के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।